भागवतम दशम स्कंद पांचवां अध्याय शीर्षक नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट श्लोक 18 तत आरभ्य नंदस्य तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम अभूत नृप तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणैः रमा क्रीडम अभूत नृप
तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्वसमृद्धिमान्
हरेर्निवासात्मगुणैः
रमा क्रीडम अभूत नृप
ततः आरभ्य
उस समय से लेकर
नंदस्य
महाराज नंद का
ब्रजभूमि गावों को पालने तथा सुरक्षित रखने की भूमि गवों को पालने तथा सुरक्षित रखने की भूमि
सर्वसमृद्धिमान
सभी प्रकार के धन से ऐश्वर्यवान हरे निवास भगवान के निवास स्थान का
आत्मगुणैः
दिव्य गुणों से रमा क्रीडम
लक्ष्मी की लीला स्थली
अभूत बनी। नृप
हे राजा परीक्षित
अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा हे महाराज परीक्षित नंद महाराज का घर भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है फलतः उसमें समस्त संपदा का ऐश्वर्य सदैव निहित है फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया तात्पर्य ब्रह्म संहिता में 5:29 कहा गया है लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं कृष्ण जहां भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती हैं। लक्ष्मियों के प्रमुख हैं श्रीमती राधा रानी अतः ब्रजभूमि में कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होंगी नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए थे वह सभी प्रकार से ऐश्वर्यशाली बन गया है తత ఆరభ్య నందస్య వ్రజః సర్వ సమృద్ధిమాన్ హరేర్ నివాసాత్మగుణై రమా అక్రీడం అభూత్ నృప. హే మహారాజ్ పరీక్షిత్, నంద మహారాజ్ కా ఘర్ భగవాన్ తథా ఉన్కే దివ్య గుణో కా శాశ్వత ధామ్ హై. ఫలతః ఉస్మే సమస్త సంపదా కా ఐశ్వర్య సదైవ నిహిత హై. ఫిర్ భీ కృష్ణ కే ఆవిర్భావ కే దిన్ సే హీ వహ ఘర్ లక్ష్మీ కీ క్రీడా స్థలీ బన్ గయా. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान के आविर्भाव के पश्चात तुरंत उसके उस समय और उसके बाद किस तरह से ऐश्वर्यशाली बन गया, इसका वर्णन कर रहे हैं. एक्चुअली ये पांचवा अध्याय का जो पहला 18 श्लोक है, नंद महाराज और वसुदेव की भेंट, ये पांचवा अध्याय का पहला 18 श्लोक, ये 19 श्लोक ये वर्णन करता है कि नंदोत्सव कैसा रचा गया. तो नंदोत्सव का वर्णन यहां है, किस प्रकार महाराज नंद ने भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव पर ऐसा दान दिया. और जो वर्णन है यहां वो दिखाता है कि कैसे समृद्धिशाली थी. और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बार बार लिखते हैं कि 5000 साल पहले गांवों में ऐसी समृद्धि थी कि नंद महाराज 20 लाख गाय दान दिए ब्राह्मणों को, और तिलाद्रीन 7 बड़े बड़े पहाड़ जैसे धान्य हरेक ब्राह्मणों को दिए, और एक दूसरे पर मक्खन और खीर और दही फेंक रहे थे. तो प्रभुपाद जी, और हरेक जो गोपियां थी वो भी सुंदर सुंदर अलंकार, गायों को भी सोने का अलंकार लगाया गया. हर एक गाय को अलग अलग से तेल और कुंकुम इत्यादि सब लगाकर फिर हर एक को सोने का अलंकार किया गया. गोपियां भी अलंकृत थी बहुत अच्छे तरह से, और सारे ब्रजवासी भी जो कृषि या किसान हैं वो भी रंग बिरंगी पगड़े और अलग अलग वस्त्र धारण किए खुशी खुशी से नंद महाराज के यहां आ रहे थे, एकदम चमक रहे थे. और प्रभुपाद जी लिखते हैं आजकल के किसान जैसे नहीं थे जो फटे कपड़े पहन के. अभी आप कार्टून देखते हैं अभी न्यूज़पेपर में, जब इनका आता है खास करके वो एक छोटा सा आर.के. लक्ष्मण, हाँ, तो उनका आप देखोगे तो हमेशा पॉलिटिशियन कुछ लिखते दे रहा साहब किसान, और उनका किसान कैसा पता लगता है, फटा एक दर ऐसा कुछ कपड़ा और एक छोटा सा और पगड़ी भी उसमें ऐसा देखा, बेचारा आधा दाढ़ी बना हुआ बाल निकला हुआ, मतलब समझ जाने किसान ही. तो ऐसी परिस्थिति है, पर गांव एक मामूली गांव भी, अफकोर्स ये मामूली नहीं है ब्रज, पर ऐसा समृद्धिमान था उस समय. तो किस तरह से अगर ये वैदिक संस्कृति का अपना है तो किस तरह से पूर्ण रूप से ये पृथ्वी समृद्धिमान बन सकती है, प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं. यहां बताया गया है कि ऑलरेडी ब्रज जो है वो समृद्धिमान है. वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते. वृंदावन यानी जहां भगवान निवास करते हैं. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री, स्वाभाविक है जहां भगवान है और जहां भक्त निवास करते हैं वहां स्वाभाविक है श्री, लक्ष्मी जी का निवास स्थान रहेगा ही. वक्षस्थल में भगवान का निवास, लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो जहां भगवान है और जहां भक्त हैं वहां सारा ऐश्वर्य स्वाभाविक है कि वो आ जाएगा। पर खास करके जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, प्रकट हुए वहां, पहले अप्रकट थे, अप्रकट भाव में हमेशा रहते हैं, पर जब प्रकट हुए तब से लक्ष्मी जी का प्रभाव और भी, वो भी प्रकट हो गई। और प्रभुपाद जी यहां सुंदर से लिखते हैं कि कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं, कृष्ण जहां भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती है। लक्ष्मियों के प्रमुख है श्रीमती राधा रानी, अतः ब्रजभूमि में कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहां प्रकट होंगी। नंद महाराज का धाम पहले ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए वे सभी प्रकार के ऐश्वर्यशाली बन गया। तो जहां भगवान हैं और जहां भक्त हैं वहां सारा समृद्धि स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब षड गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा सारे लीला स्थल को प्रकट करने के लिए और फिर भक्ति ग्रंथों की रचना करने के लिए और मंदिर की स्थापना करने के लिए और पूजा विधि स्थापन करने के लिए और वैष्णव आचार संहिता किस प्रकार से एक भक्त जीना है, कैसा क्या उनके कार्य होने चाहिए, उसका वर्णन करने के लिए उनको आदेश दिया षड गोस्वामियों को, जिसके द्वारा वृंदावन फिर से समृद्धिशाली बन गया। पहले सिर्फ जंगल था, षड गोस्वामियों के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ब्रजभूमि जो था जंगली जंगल था, वहां कुछ भी थे कुछ भी नहीं था, पर लीला स्थली प्रकट किया। इसी तरह से एक्चुअली जब आचार्य आते हैं, महान आचार्य नाना शास्त्र विचारणे का निपुणों सब धर्म संस्थापकों, ये हमारे जीवन में कृष्ण को प्रकट करते हैं। कृष्ण सर्वव्यापी है, एक्चुअली कृष्ण सब जगह है, कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है, पर आचार्य जो है कृष्ण को स्थापित करते हैं ताकि हम उनको देख सके और उनकी सेवा में लग सके। और इसी तरह से हम देखते हैं प्रभुपाद हमारे जीवन में भी, वृंदावन में ऑलरेडी कृष्ण है पर उसको आचार्यों ने प्रकट किया, वहां षड गोस्वामियों ने प्रकट किया। इसी तरह से प्रभुपाद जी भी हमें भारत में, हम सबको मालूम है वृंदावन नाम का जगह है, पर उसकी महिमा जो है, उसका सच्चा ऐश्वर्य क्या है, वो ऐश्वर्य उसका प्रकट प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ है। श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण की सेवा में लगते हैं तब श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई, ये समझ लेना हमको। और क्यों सबसे सर्व सबसे श्रेष्ठ आदि लक्ष्मी बताया गया है, प्रमुख लक्ष्मियों में प्रमुख हैं श्रीमती राधा रानी। राधा रानी जो है सारे लक्ष्मी जी के स्रोत हैं। रामादि मूर्ति शुकला निमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोत भुवनेश। जब भगवान अलग अलग प्रभु रामचंद्र के रूप में आते हैं तो राधा रानी लक्ष्मी सीता माता के रूप में आती है। जब भगवान सृष्टि के हेतु विष्णु के रूप में आते हैं तो राधा रानी जी लक्ष्मी। ताभिर ये वनिज रूप तया कला भी, नहीं उसका शुरुआत क्या है हमेशा भूल जाता हूं, गोलोक एवं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निजरूपतया कला भी, निजरूपतया कला भी। एक्चुअली तो भगवान के आनंद चिन्मय रस यहां वृंदावन में आस्वादन करने के लिए राधा रानी अलग 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 तरीके से विस्तृत होती है, सारे गोपियों उन्हीं के विस्तृत रूप है एक्चुअली, और उनकी सेवा के लिए। तो जब जब कृष्ण आते हैं तो श्रीमती राधा रानी आती है। स्वाभाविक है कि राधा रानी आने वाली है वहां, कभी राधाष्टमी हम लोग मनाने वाले हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी, पर आप देखेंगे लोगों को राधा राधाष्टमी की महिमा उतनी नहीं मालूम, नहीं समझ पाते हैं एक्चुअली। जन्माष्टमी थोड़ा बहुत मालूम है, जन्माष्टमी उतनी तरह से नहीं मालूम, पर प्रभुपाद जी के आने के बाद अभी थोड़ा बड़े पैमाने पे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं पूरे विश्व भर में, पर राधाष्टमी उतना प्रसिद्ध नहीं है। एक बार एक रिपोर्टर आई थी हमारे यहां, वो वीडियो सब लेने के लिए, वो पूछ रही थी ऐसे कैसे कि राधाष्टमी इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं है जितना जन्माष्टमी प्रसिद्ध है। बोले नहीं, क्योंकि भक्ति जो है वो बहुत ही दुर्लभ है भक्ति, और जब तक आचार्यों की कृपा नहीं होगी तब तक ये भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान सबके हृदय में सच्चिद आनंद का जो लादिनी शक्ति डाले हुए हैं, वो सबके हृदय में लादिनी शक्ति का एक अंश डाला हुआ है, सुप्त अवस्था में है वो, और आचार्य जैसे जब मिलते हैं वो प्रकट करते हैं उसको, और उसके द्वारा भगवान बिक जाते हैं। समृद्धिमान मतलब क्या, एक तो भौतिक समृद्धि, पर सच्चा समृद्धि ये है जब आध्यात्मिक, सबसे बड़ा धन प्रेम महाधन, क्योंकि भगवान उससे बिक जाते हैं। इसीलिए राधा रानी लादिनी शक्ति का स्वरूप है, जिससे श्री कृष्ण आकर्षणीच सा महात्मानस माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। जब वो राधा रानी के हम आश्रय लेते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं, क्लेशाग्नि शुभदा, पहले भक्ति के तीन है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति में दो चीज होता है, क्लेशाग्नि और शुभदा, मतलब सारा क्लेश निकल जाता है। सबसे पहले हमको अनुभव होता है जब भक्ति में आते हैं, तो सबसे पहले अभी ये छूट गया मेरा, ये वो छूट गया, सारा पाप कर्म छूट गया। तो मेन हमारा फोकस होता है कि सारी बुरी आदतें गई, जैसे साधना भक्ति का पहला इंस्टॉलमेंट है क्लेशाग्नि, और दूसरा है शुभदा। एक्चुअली सब शुभ हो जाता है हमारे जीवन में, क्लेशाग्नि शुभदा। फिर जैसे जैसे प्रगति करते हैं, भाव भक्ति में आते हैं, मोक्ष लघुताकृत, पूरी दुनिया मोक्ष के पीछे, पर हम मोक्ष लघुताकृत, मम जन्म नहीं जन्म, जन्म जन्म मिलेगा चलेगा, मुझे मोक्ष ही नहीं चाहिए, पर आपकी भक्ति नहीं खोनी चाहिए मुझे, सुदुर्लभ, और वो सुदुर्लभ है भाव भक्ति भी। पर प्रेम भक्ति जो है, सांध्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। तो ये राधा रानी की कृपा है एक्चुअली, और ये खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, इनके अलावा दूसरे लोगों को भी मालूम नहीं उसकी उतनी पूर्ण महिमा। और न केवल महिमा नहीं मालूम, बल्कि उसको इतना सरल तरीके से देना, यह श्री चैतन्य महाप्रभु का खास और महाप्रभु के अनुयायियों का खास सौभाग्य है, जो और दूसरे संप्रदायों में भी नहीं है पूर्ण रूप से। अनर्पित चरिंचिरात करुणाया समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वलरसम। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण से अभिन्न है, श्रीमद् भागवतम और श्री विग्रह में कोई अंतर नहीं है, भगवान के स्वरूप में और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, भागवतम एक्चुअली कृष्ण का स्वरूप है। इसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो राधा रानी का स्वरूप है, वो जैसा कृष्ण भागवतम जो है कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है। और रूप गोस्वामी ने उसको प्रकट किया, वो है ऑलरेडी भागवतम में है, भक्ति रसामृत सिंधु में 95% से ज्यादा भागवतम से ही कोटेशन किया गया, कैसे मुक्ति तुच्छ माना गया है, वृत्रासुर कैसे कहता है, ये कैसे कहते हैं, वो कैसे कहते हैं, सब प्रहलाद महाराज कैसे कहते हैं, कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे नारद मुनि की सेवा करते रहूं मैं, जब तक ये मूर्ख लोग यहां सड़ रहे हैं तब तक मैं यहां रहूंगा। तो जैसे एक बार हम लोग रावल गए थे, रावल जो राधा रानी का जन्म स्थान है, वहां तो राधानाथ महाराज जी बैठे हुए थे और कृष्ण क्षेत्र प्रभु जो मिनिस्टर फॉर डीटी वर्शिप इन इस्कॉन, इस्कॉन के डीटी वर्शिप के मिनिस्टर, वो बैठे हुए थे और उन्होंने प्रवचन देते देते एक प्रश्न पूछा, उनके मन में भी एक प्रश्न आया, कहा कि ये गोस्वामी जो थे उन्होंने सिर्फ कृष्ण की विग्रह की स्थापना की, राधा रानी नहीं थी, ऐसा क्यों? गोविंद देव, मदन मोहन, एक्चुअली पहले सिर्फ कृष्ण थे, बाद में जानवा देवी ने राधा रानी को अनवाया और वहां रखवाया। तो बोले ऐसे क्यों कि कृष्ण को ही क्यों किया, राधा रानी को क्यों प्रकट नहीं किए? तो उसके बाद राधानाथ महाराज जी बैठे हुए थे, वो उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण यानी ऑलरेडी कृष्ण में राधा रानी है, वो कृष्ण का जो स्वरूप है उसका हम पूजा करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर राधा रानी लादिनी शक्ति है, पर आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने राधा रानी को भी प्रकट किया है हमारे लिए, ताकि उनकी कृपा से हम महात्मानस्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता उनकी आश्रय ले और भगवान की सेवा में करें और भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा आकर्षित करें, और ये उनकी कृपा है। इसी तरह से नाना शास्त्र विचार नहीं करनी पड़ो सद्धर्म संस्थापकों, भागवत है और उसमें से भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो एक मतलब उसको मतलब जैसे दूध में से मक्खन निकाल के अलग से देना चर्म करके, इस तरह से सद्धर्म संस्थापक उसमें से खास राधा रानी को निकालकर भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में प्रस्तुत किया। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक बार कहा, व्हाट ए शेम दैट भक्ति रसामृत सिंधु इज नॉट नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा खजाना है, सबसे बड़ा खजाना है भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि वो ऐसा धन है, वो आपको ऐसा धन की ओर निर्देशन कर रहा है, ऐसा खजाना की ओर। कोई अगर जैसा हो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजर हंट कहीं तो ट्रेजर है और उसको ढूंढना, और कोई मार्गदर्शन दे रहा है इधर से जाओ और बाएं मुड़ना और वहां एक पेड़ रहेगा, पेड़ के जो है वहां गड्ढा खोदना, वहां मिल जाएगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो खजाना कैसे प्राप्त करना है बता रहा है, ऐसा सबसे मतलब श्रेष्ठ खजाना ये छिपा हुआ है भारत में और किसी ने बांटा नहीं, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उस भावना को समझकर वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स ही पब्लिश इस नेक्टर ऑफ डिवोशन, और उसको बड़े पैमाने पे बांट दिए लोगों को, जिसके प्रैक्टिस करने से, जिसका मतलब अगर उतारेंगे अपने जीवन में तो भगवान को हम खरीद ले सकते हैं। बार बार महाप्रभु कहते हैं हर एक भक्तों के बारे में, आई एम सोल्ड आउट, ही कैन सेल मी वेयर आई वॉन्ट, आई एम हिज प्रॉपर्टी, मैं इसका क्या बोलता हूं बिक चुका हूं, वो जहां चाहे मुझे बेच सकता है। इस तरह से भगवान बिक जाते हैं, और इसीलिए राधा रानी जब कहती है, किसी को रिकमेंडेशन करती है, तो कृष्ण ना नहीं कह सकते। तो किसी ना किसी तरह से, इसीलिए वृंदावन में हम लोग राधे राधे कहते हैं, मालूम है राधा रानी का ये जगह है, और राधा रानी कृपा कर दी तो फिर कृष्ण निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाएंगे। और इस स्तर पे पूर्ण रूप से मतलब इंद्र तृप्ति का भावना है ही नहीं एक व्यक्ति के हृदय में। धर्मधर महाराज एक बार बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी इज कॉन्सेंट्रेटेड डिवोशन, हर होल एग्जिस्टेंस टॉप टू बॉटम इज कॉन्सेंट्रेटेड डिवोशन। जैसा उस दिन हम चर्चा कर रहे थे सांद्रानंद, सांद्रानंद मतलब गाढ़ा, जैसे शक्कर का पानी है उसको उबालो 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 तो और थोड़ा मोलासेस बन जाता है, उसको उबालो और उबालो तो एकदम खड़ी साकर बन जाता, जहां भी चाटो उतना ही मीठा है। इस तरह से शुद्ध 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 भक्ति को शुद्ध करो, जैसा रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा लिखते हैं वहां, आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्य कृष्णानुशीलन, अन्याभिलाषिता। पर अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं पर अन्य अभिलाषा भी बहुत सारे हैं, ये साथ साथ में मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है, बाद में सब ठीक ठाक चलना चाहिए, तकलीफ नहीं आना चाहिए मेरे जीवन में प्रभु। बस कुंती देवी कहती है, पहले कहती है विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया वनवास कृतस्थः, प्रभु आपने कितने कितने बार हमें बचाया, विष में विष से बचाया, विष पान कर भीम को विष पिलाया जा रहा था, विशान महाग्नि अग्नि वारणाव्रत में हमको जलाया जा रहा था, आप बचाए हमसे। पुरुषार्थ दर्शनात् जब वनवास में गए थे, मृदे मृदे अनेक महार्था, सब इसमें बचाया उसमें बचाया उसमें, तो लोगों को लग सकता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है भगवान, अभी ले लिया तो बचाना है, बचाना बचाना है, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे। तुरंत कुंती देवी कहती है कि नहीं, हमारा संबंध सिर्फ बचाने के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं आई हूं आपके यहां। इसीलिए कहती है विपद संतुत आशश्वत, बोले आप ऐसा मत समझना कि मैं कृतज्ञ हूं कि आप उस बड़े बड़े परिस्थिति में, क्योंकि उस परिस्थिति में आप आए और आपका दर्शन मिला मुझे। भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम, इसका मतलब है भगवान को हर जगह देखना। हम सिर्फ भगवान को अच्छी चीजों में देखते हैं, अच्छी परिस्थिति में क्या भगवान की कृपा है, पर ऐसा नहीं है क्या, मतलब दूसरे समय में भगवान नहीं है या उनकी कृपा नहीं है हमारे ऊपर, तो एक्चुअली हर स्थिति में और खास करके ऐसे स्थिति में भगवान को देखना ये बड़ा मुश्किल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर बहुत सुंदर से तात्पर्य लिखते हैं कि क्यों भगवान अपने भक्तों को तकलीफ में डालते हैं, इतने सुंदर कारण देते हैं, मैं विवरण नहीं कर सकता हूं पूर्ण रूप से, पर कुछ हद तक कर सकता हूं, एक दो पॉइंट जैसा। उन्होंने कहा क्यों देते हैं ऐसा, बोले अगर सबको ऐसा हो सकता है कि भक्ति में सिर्फ एकदम स्मूथ बना सकते हमारा जीवन, पर अगर स्मूथ बना दिया तो शायद हर एक व्यक्ति आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी चला जाता उसका, कुछ चीजें छिपा के रखते, सबके लिए उपलब्ध नहीं है। अगर क्यों भक्ति में आ रहे, व्यक्ति एकदम अच्छा जाता है जीवन, अगर इसलिए जाता है तो शायद हजार लोग और भी आ जाएंगे जो स्मूथ जाने के लिए आएंगे, कृष्ण के लिए नहीं आएंगे, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग रखा गया है। और ऐसा परिस्थिति कर देते हैं, लोग बोलेगा अच्छा ऐसा होता है, तो नहीं यस्या हम अनुग्रहणामी हरिष्य तधन, ए नहीं आना भाई, मतलब स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो शुद्ध नहीं है वो बाहर ही रहो, तुम लोग ब्रज में नहीं आ सकते, तुम लोग तुमको सुख जीवन चाहिए तो जाओ। जैसे युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, शिवजी के भक्त, शिवजी वैरागी हैं पर उनके भक्त समृद्धिशाली हैं, और विष्णु क्या ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के साथ रहते, उनके भक्त जो सुदामा जैसे, बोले ऐसा क्यों, बोले ये स्क्रीनिंग सिस्टम है भगवान का, बाहर जो बाहर के दृष्टिकोण से देखते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। जन्म ईश्वर श्रुत श्रीधीर एधमान, ये दुर्भाग्य है अगर ऐसा समृद्धि बाहर का मिल गया और भक्ति नहीं मिली, एधमान नैव आरहति अभिदातुम त्वाम अकिंचन, और आप चले जाओगे सारा। कुंती देवी कह रही है अब हम मेरे पुत्र विश्व के सम्राट बन गए, मैं राजमाता बन गई और ये सब हो गया और आप चले जा रहे हो, धिक्कार है, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, हम वही जंगल में रहेंगे और वो हिडिम भी ऐसे कोई राक्षस आते रहे और आप आके हमको हमारे साथ रहो बस, वो चलेगा, वो चलेगा। ये एक्चुअली भक्ति है, उसका जिसने आस्वादन कर लिया वो श्रीमती राधा रानी की कृपा है, कि उसका जिसने आस्वादन कर लिया उसको और कुछ नहीं चाहिए, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, मंदिर है तो उपयोग करेंगे, नहीं है तो भी चलेगा, पेड़ के नीचे बैठेंगे, फसला छप्पन भोग है अच्छा है खाएंगे, नहीं है तो चलेगा, बड़े बड़े अच्छा जगह है, प्रॉपर्टी है बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा, हमको ना प्रॉपर्टी से लेना है ना मंदिर से लेना, हमको कृष्ण से लेना देना, भक्ति से लेना देना, जो है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। तो ये भावना खास करके भक्तों का संग और हरिनाम, ये प्रभुपाद जी का देन है, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, हरिनाम और भक्तों का संग, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, ये भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा है, और इसके द्वारा हम समझते हैं भक्ति और भक्तों का संग। तो एक बार प्रभुपाद जी का मैंने एक लेक्चर सुना, राधाष्टमी के लिए मुझे तैयारी करना था, तो मैंने बोला कि प्रभुपाद जी का कुछ सुनते हैं और जैसी आए तशी सुनाएंगे, तो एक कैसेट लिया मैंने, राधाष्टमी का कैसेट लिया और उसको लगाया, मैं लगाया तो भगवान प्रभुपाद जी शुरू किए और कृष्ण के बारे में बोलने लगे, सो कृष्ण ही जगदीश्वर, और बोलते जा रहे हैं, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, जनरली प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं बोलते, 25-30 मिनट का लेक्चर उनका, 25 मिनट हो गया अभी तक कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा शंका लगा, मैं जन्माष्टमी का कैसेट ले लिया या राधाष्टमी का कैसेट ले लिया, तो मैंने फिर से कैसेट देखा, जन्माष्टमी, कभी कभी क्या होता है लाइब्रेरी में वो कैसेट लेके किसी और डब्बे में डाल देते, उसका डब्बे में कुछ और लिखा रहता है और अंदर कैसेट कुछ और, तो मैंने कैसेट के ऊपर भी देखा, नहीं राधाष्टमी लेक्चर सुन, तुम बोल रहे थे क्या प्रभुपाद जी कंफ्यूज हो गए क्या राधाष्टमी के जन्माष्टमी क्या, 95% कृष्ण का गुणगान करके लास्ट में बोल, मतलब कृष्ण कितने, कौन है ये कृष्ण समझो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, क्या नहीं है उनके पास, ऐसा कृष्ण का वर्णन 95%, और लास्ट में बोले ऐसे कृष्ण राधा रानी के प्रेम से बिक जाते, पूरी दुनिया को आकर्षण करने वाले कृष्ण, सर्व आकर्षयति कृष्ण, राधा रानी के प्रेम से खुद आकर्षित हो जाते, आप जान लो राधा रानी कौन है, तब समझ में आया, ये सब प्रिपरेशन था राधाष्टमी के लेक्चर के लिए, कृष्ण को पहले जानो और जानने के बाद यह समझो कि ऐसे कृष्ण जो पूरी दुनिया आकर्षित हो जाती है उनके पीछे, मदन मोहन, पूरी दुनिया मदन के पीछे पागल है और मदन को मोहन करने वाले मदन मोहन मोहिनी, उनको मोहने वाले श्रीमती राधा, और यह भक्ति है, क्योंकि एक भक्त के हृदय में जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, भक्त का है मुझे एक्चुअली भगवान का अवतार क्यों होता है, जैसा कुंती महारानी की प्रार्थना है, दूसरी जगह में भी हम सुनते हैं, परित्राण साधु नाम विनाशाद दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये सब बाहरी कारण है, असुरों को मारना कोई तकलीफ नहीं है, भक्तों को भक्तों को क्या बचाना, उनको कोई बचाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी मुक्तात्मा है, बोलते हैं मम जन्म नहीं जन्म, जैसे अम्बरीश महाराज खड़े थे बोले राखे कृष्ण मारे के, मारना है तो छोड़ो पर वो क्या करना है भी? क्यों भागना इधर उधर, तो भक्त मुक्तात्मा है ऑलरेडी, प्रहलाद महाराज चुपचाप खड़े थे, हिरण्यकश्यप मारने वाले ठीक है मारे कृष्ण राखे की, तो भक्त मुक्तात्मा है, उनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है, और जो असुर है उनको मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भौतिक शक्ति ही मम माया दुरत्या मार सकती है उनको, और धर्म की संस्थापना करने के लिए कोई भक्तों को भेज सकते हैं, बोले क्यों आते हैं, क्योंकि भक्त जो है कृष्ण के बिना शून्यायितम जगत सर्वम, इतने आतुर है भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के साथ आदान प्रदान के लिए, कि उनका प्रेम जो है खींच के ले आता है, उनको खींच के ले आता है एक्चुअली, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। तो हम राधा रानी से जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्तों के साथ, 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, एक श्लोक है उसके, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भक्तिर साम्र सिंधु में प्रभुपाद जी 11 स्कंद का कोटेशन बोलते हैं, जहां बोलते हैं मैं तपस्या से नहीं, मैं ज्ञान से नहीं, मैं स्वाध्याय से नहीं, मैं पूजा से नहीं, मैं इससे नहीं, इससे नहीं, किसी से भी उतना आकर्षित नहीं होता जितना मैं भक्ति से होता हूं, भक्त्या माम अभिजानाति। तो एक्चुअली भक्ति जो है कृष्ण को आकर्षित करती है। देखिए जब बृहद भागवतामृत में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज जब प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं,
तो अपने आप को समझ लें कि मैं भक्ति नहीं हूं। छह, प्रहलाद महाराज कैसे भक्त थे, मेरे अंदर हृदय में भक्ति नहीं है। जबकि बृहद भागवत में वर्णन है प्रहलाद महाराज तो शांत रस में थे। जब नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास गए तो प्रहलाद महाराज ने बोला मैं तो सिर्फ हरि नाम ले रहा था, कुछ नहीं। प्रहलाद के युधिष्ठिर के पास जाओ, युधिष्ठिर ऐसे महान भक्त हैं कि ऐसे परब्रह्म जो है उनके घर में फिरा करते थे उनके प्रेम। नारद मुनि ने भी कहा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो तुम पांडव कि तुम्हारे बड़े बड़े योगी जंगल में जाते भगवान को ढूंढने के लिए, तपस्या करने के लिए वो नहीं मिलते, पर वो कृष्ण ढूंढते हुए अपने भक्तों के घर आते, अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते। ये भक्ति की महिमा, जिनको हम ढूंढते ढूंढते जाते नहीं मिलते, पर वो ढूंढते ढूंढते आते उस भक्त को, उसके प्रेममयी सेवा को स्वीकार करने के लिए। और ये ऐश्वर्य जो है, जैसे हमने कहा कि भगवान जहां है, भक्त जहां है वहां ऐश्वर्य है, पर एक देवताओं का ऐश्वर्य देना और भगवान का ऐश्वर्य देने में अंतर है। जब देवता ऐश्वर्य देते हैं वो ऐश्वर्य दे देते हैं, बस तुमने मांगा ये ले दे दिया, पर भगवान ऐश्वर्य देंगे भी तो ऐसे देंगे, साथ साथ में साक्षात्कार भी ये देंगे कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो दे तो दिया पर समझ लेना इसमें कुछ नहीं है। ये जैसे ध्रुव महाराज जा रहे थे, मेरे को एक ऐसा पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने का शक्ति चाहिए, तपस्या की उसने और भगवान ने दिया भी, ध्रुव लोग दिया, पर जब वापस आ रहे थे तो बहुत ही घृणा हो रही थी, क्या मूर्ख हूं मैं, काचन विचिन्मन अपि द्रव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचित। भगवान अगर समृद्धि भी देते हैं साथ साथ में ये साक्षात्कार देते हैं कि ये सब चीज जो है अपने आप में कुछ भी नहीं है, और समझ लेना अच्छा धन ये नहीं है, सच्चा धन ये नहीं है, सच्चा धन है वो भक्ति जिससे पूर्ण रूप से पूर्ण आत्मा जो तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और भगवान के पास जाएंगे तो ये देते। एक हमारे लड़का है, कॉलेज का लड़का है, हमारे गोविंद प्रभु के पास आया, हो उसके पास एक नया सा एक आईपॉड आया है, क्या बोलते हैं आईपॉड नहीं आईफोन लेके आया हो, और उसमें क्या क्या नहीं है, उसमें फोटो खींच सकते हो, फोटो को आप ऐसे घुमा सकते हो, फोटो को टेढ़ा बना सकते हो, सीधा बना सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसके नाक के ऊपर देख सकते हो उसका पूरा, उसको एक मील दूर भगा के उसका चेहरे देख सकते हो पूरा दृष्टि, फिर उसको एकदम पास ला के उसके आंखों में आंख डाल के, मतलब यू कैन कंट्रोल द पिक्चर, पूरा कंट्रोल, ऐसा ऐसा घुमा के ये कर सकते हो, वो क्या नहीं कर सकते हो। और वो किया 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 एक एक दो हफ्ते तक वो खेला आईफोन से, यहां तक कि जब करते वक्त भी आईफोन लेके करता रहता था, हरे कृष्ण कृष्ण, और बाद में उसको लगा मैं क्या कर रहा हूं, जब कर रहा हूं या आईफोन कर रहा, तो फिर वो उसमें आया और गोविंद प्रभु को बोला कि प्रभु जी ये आपके लिए डोनेशन ले लो, बहुत कॉस्टली है वो। गोविंद प्रभु ने बोला अच्छा पहले क्यों दे रहा है, एकाएक मेरे को क्यों दे रहा है, बोला प्रभु जी मैं तंग आ गया, मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन है। बोला वाह तेरा भजन भाव बोला मेरे दे रहा मुझे मेरे ब्रह्मचारी का तू ये कर रहा था, बोले तू मेरे मुझे क्यों दे रहा, बोले मैं कुछ मैं क्या करूं, बोलो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें। अल्टीमेटली उसने बेच दिया उसको। तो बोल रहे थे ध्रुव महाराज को भगवान ने पूरे ब्रह्मांड दे दिया आईपॉड जैसा, तू जैसा नियंत्रण करना चाहता है तू कर, जैसा हिरण्यकशिपु के पास, बारिश चाहिए बारिश, जब नहीं है तो भी बारिश हो सकता है, हम एक छोटा आईफोन को नियंत्रण करते हैं, वो क्या है बेसिकली इमेज है वो बस, पर कंट्रोलिंग में कितना एक तरह का आनंद है। ध्रुव महाराज को पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण दे दिया, जैसा वो आईपॉड घुमाते हैं हम लोग, ऐसा बटन दबाया तो पूरे दुनिया ब्रह्मांड घूम सकती है, पर भगवान के दर्शन करने के बाद ध्रुव महाराज कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे वो सब, वो डिस्ट्रैक्शन है वो मेरे लिए, इतना नियंत्रण करना सब लोग मतलब मेरे को पूजा कर रहे हैं पर वो मेरे लिए बाधा है। काचन विचिन्वन अपि दिव्य, मैं कांच के टुकड़े के, पूरी दुनिया उस कांच के पीछे भाग रही है नियंत्रण करने के लिए. तो ध्रुव महाराज कहते हैं काचन विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम स्वामीम कृतार्थोस्मि, अब मैं पूर्ण सुतृप्त हूं, मैं आनंदित हूं, मुझे नहीं चाहिए वरम न याचे, मैं कुछ वर नहीं चाहिए. खुजली है एक प्रकार का भौतिक आसक्ति, खुजली है वो. खुजली कैसा है, आप लोगों को नहीं हुआ तो अच्छा है, पर मुझे एक बार हुआ था इसलिए मेरा अनुभव बता रहा हूं. खुजलाएंगे बहुत अच्छा लगता है, वाह कितना सुंदर आनंद, और थोड़े समय के बाद और ज्यादा खुजली आता है डबल, और फिर उसको खुजाना ज्यादा खुजलाना पड़ता है, ज्यादा खुजलाने से और ज्यादा आनंद आता है. खुजली में एक प्रकार का आनंद है, और उसके बाद फिर 20 सेकेंड के बाद ट्रिपल फोर्स, और उसको तीन गुना ज्यादा जोर से खुजलाना पड़ता है. और बाद में एक ऐसा परिस्थिति आता है, खास करके अगर पीठ में खुजली हो जाए तो कितना कैसे खुजलाओगे, बाद में डंडा लेके उसमें ऐसा खास, मैंने देखा कुछ लोगों के पास एक ऐसा हाथ लगाया उसमें, एक लकड़ी है उसमें हाथ. नॉर्थ इंडिया से वो गए थे वहां टूर के लिए, तो वहां से खरीद के लाए. मैं बोला ऐसा हाथ क्यों ऐसा लगा, मैं यज्ञ का ऐसा होता है. मैं सोचा वो बोला नहीं प्रभु जी ये खुजलाने का ऐसा डाल के उसके अंदर. खुजलाया और बाद में खुजलाने के बाद, बाद में एक ऐसी स्थिति आती है खुजला के वहां घाव हो जाता है, और बाद में खुजली भी आती है. खुजलाया तो दर्द क्योंकि घाव हो गया है, और नहीं खुजलाया तो भी तकलीफ क्योंकि खुजली है. तो भौतिक इच्छाएं ऐसी है, कोई अंत नहीं है उसको. उसको तृप्त करो और भड़केगी, उसको तृप्त करो तो और बाद में तृप्त नहीं है, सामने सामग्री भी है और फिर भी तृप्त नहीं है आदमी. तो स्वामीन कृतार्थोस्मि, तो उस समय देवताओं के पास जाना ऐसा है कि किसी को जाके दोस्त को बोला यार तू खुजला देना, तो वो खुजलाएगा, खुजली बढ़ेगी पर तृप्त नहीं होगा. भगवान के पास जाना कैसा है, एक डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को जाके बोलेगा डॉक्टर साहब थोड़ा खुजली है पीछे, तो खुजलाते नहीं बैठेगा डॉक्टर, उसके लिए नहीं होगा. वो एक ऐसा दवाई लगाएगा कि खुजली भी चली जाएगी और तुम भी तृप्त हो जाओ, समस्या हल हो जाएगा. तो ध्रुव महाराज जब गए भगवान के पास तो भगवान ने उनकी इच्छा तो पूर्ण की, खुजली दूर हो गया, पर साथ साथ में बोले कि ये बीमार है, ये बीमारी है, इसे हटो. तो ये भगवान की कृपा है. तो राधा रानी की कृपा क्या है, प्रभु प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि ये भक्ति ये श्री चैतन्य महाप्रभु का देन है. न केवल वो आस्वादन किए, वो भंडार को मतलब फोड़ दिया उन्होंने, आस्वादन किया और उसको बांटे वो अनर्पित चरिंचिरा उन्नत उज्ज्वल रसान, ये माधुर्य रस पूर्ण रूप से मतलब भगवान की शरणागति ये एक्चुअली. और जहां कृष्ण है वहां स्वाभाविक रूप से श्रीमती राधा रानी की कृपा आएगी. जहां भगवान है और जहां भक्त हैं वहां श्री आने वाली, और वो है भक्ति, भक्ति का स्वरूप है. जैसे एक दारू की दुकान है और पीने वाले हैं, क्या होगा वहां, भागवत कथा नहीं होने वाला वहां. दुकान है दारू का और पीने वाले लोग वहां आए हैं चार लोग, तो वहां पीना शुरू हो जाएगा. तो जहां भगवान है और जब भक्त एकत्रित हुए तो वहां क्या होगा, भक्ति होगी बस, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला. इस तरह से भगवान की कृपा से जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त उन्होंने कृष्ण को प्रकट किया सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और कृष्ण को देने के बाद हमें किसी ना किसी तरह से भक्ति क्या है ये समझाया, तो भक्त बन गए. और जहां भगवान है और जहां भक्त है स्वाभाविक रूप से भक्ति बढ़ती जाएगी, और वो भक्ति जो है प्रेम महाधन, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा ऐश्वर्य वो है, और वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से मिल सकती है.
तो अभी राधाष्टमी 8 तारीख को, 8 तारीख को, तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए श्रीमती राधा रानी से कि उनकी कृपा, और उनकी कृपा का मतलब क्या, भक्ति का ज्ञान, और उनकी कृपा मतलब भक्ति रसामृत सिंधु एक्चुअली उसको अध्ययन करेंगे और सिस्टमैटिकली समझेंगे और अपने जीवन में अगर उतारने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमें सब जान जाना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर है, और तब एक न एक दिन राधा रानी की कृपा से कृष्ण उपलब्ध हो जाएंगे तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या?
तो ये दूसरा मुद्दा बताने वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बता दें, स्मूथ हो जाता
है। हाँ, ओ स्क्रीनिंग,
दूसरा स्क्रीनिंग
नहीं, स्क्रीनिंग मतलब ऐसे लोग ना आए इसीलिए। और दूसरा चीज कहते हैं कि जैसे अगर अंधकार ना हो तो फिर दीप का महत्व तो नहीं है। गर्मी में ठंडा पानी का आस्वादन ज्यादा समझ में आता है, और ठंडी में गर्म पानी, गर्मी में गर्म पानी उतना मजा नहीं आता। इस तरह से जब कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, उस समय में हम एक्चुअली ये जो भगवान की भक्ति है, किस तरह से एक सच्चा सुख और आनंदमय जीवन, उसको हम लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं। यू कैन एप्रिशिएट लैम्प ओनली इन डार्कनेस, यू कैन एप्रिशिएट कोल्ड वाटर ओनली इन द हॉट सीजन, यू कैन एप्रिशिएट हॉट वाटर ओनली इन द कोल्ड सीजन। जैसे हीरा, हीरा को ऐसे ही जमीन पर रख दे तो उतना नहीं, पर वही हीरे को अगर ब्लू सैटिन क्लॉथ के ऊपर बैठाया गया, हीरे के दुकान में आप देखोगे ऐसा सैटिन का क्लॉथ उसके ऊपर बैठ, तो उसके ऊपर मतलब यू एक्चुअली स्टैंड्स आउट। तो जब ऐसी परिस्थिति में डालते हैं और भक्तों की भक्ति नजर आती उस समय, ये तो सब ठीक ठाक चल रहा है तो नोबडी विल रियलाइज हाउ टेस्टी इज भक्ति। तो ऐसी परिस्थिति में द्वारा भगवान दिखाते हैं, जैसे भीष्म पितामह कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदन, कि किस तरह से आप लोग गुजरे पर आप, आपकी निष्ठा कभी हिली नहीं भगवान की सेवा से। मैं भी उसके ऊपर एक दिन थोड़ा विस्तृत रूप बहुत सिस्टमैटिकली एक 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 आर्ग्यूमेंट, मतलब तो कोई पूछ सकता है ऐसा कैसे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कॉमेंट्री ऐसा है, हमेशा प्रश्न उत्तर के रूप में देते हैं। तो हो सकता है कि अर्जुन ने प्रश्न पूछ सकता है ऐसा, तो उसके उत्तर में कृष्ण ऐसे कहते, मतलब हर एक श्लोक का और दूसरे श्लोक का कनेक्शन प्रश्न उत्तर के रूप में कनेक्ट करते हैं। उसमें बहुत सुंदर है, अलग अलग कारण दिए हैं क्यों ऐसी समस्याएं आती हैं, या कुंती देवी मांग भी रही है। नहीं, 100% भागवतम, भागवतम नो डाउट अबाउट इट, भागवतम खुद बतलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में है क्या बेसिकली भागवतम का विस्तृत, आप देखोगे कोई हरेक अध्याय में तो यथा चतुर्थे, चतुर्थ स्कंध में ऐसा जाया बताया गया, यथा पंचमे वृत्रासुर ने क्या बोला, पहले स्कंद में और दशम स्कंद में गोपियों ने क्या कहा, भक्ति रसामृत सिंधु सारे आचार्यों की। इसीलिए एक वन ऑफ द ऑफेंसेस टू द होली नेम इज टू
शास्त्र और उनके प्रमाणों का कौन सा है वो चौथा वैदिक शास्त्रों अथवा उनके प्रमाणों का खंडन. मतलब जो भी प्रभुपाद जी ने जो भी पुस्तक लिखा है वो गीता और भागवत का थोड़ा विस्तृत करके लिखे हैं. बस इधर उधर से उदाहरण लिए. नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुण हूं सद्धर्म संस्थापकों. तो उन्होंने वापस मतलब अल्टीमेटली जो भी वो लिख रहे हैं दूसरे शास्त्र हैं वो एक पहलू वहां से लेके उसको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं. पर एक्चुअली इट इज नथिंग बट भागवत. क्योंकि भागवत है क्या? भागवत में तीन ही चीज है, भगवान, भक्त और शुद्ध भक्ति. और कुछ नहीं भागवत में. भगवान, भक्त और शुद्ध भक्ति. तो जो भी शास्त्र हमें उसकी ओर प्रोत्साहित करते हैं शरण लेने के लिए वो वैदिक वो आचार्यों का सद्धर्म संस्थापकों. जो दूसरे पुस्तक लिखे हैं भक्तिर सामर्थ्य सिंधु क्या है वो? इट्स नथिंग बट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम भागवतम. केवल भक्ति के बारे में उसको बताना. जैसे कृष्ण के अंदर लादिनी शक्ति है, संदिनी संवित और लादिनी शक्ति. पर वो लादिनी शक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधारण. राधा कृष्ण एक ही है पर जब अलग होते हैं वो राधा कृष्ण है, जब एक होते हैं तो महाप्रभु. तो ऐसे भक्तिर सामर सिंधु और भागवत दो अलग है पर एक्चुअली एक ही है. उसमें से निकाल के अलग किया है और वो नथिंग बट और उसके द्वारा राधाना के द्वारा कृष्ण की सेवा में इस तरह से भक्तिर सामर पढ़ने के बाद हम भागवत को पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं भागवत के सिद्धांत. तो उसमें एक्चुअली अंतर नहीं. और एक्चुअली चैतन्य चरितामृत क्या है? विच इज दी फाइनर स्टडी ऑफ श्रीमद भागवतम, एडवांस स्टडी ऑफ श्रीमद भागवत, वैयक्तिक भागवत, सुप्रीम भागवत महाप्रभु. इसीलिए आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में, अब भागवत के भी प्रभुपाद दिखते हैं पूरा चैतन्य महाप्रभु की जीवनी दी है. बोले ही वॉज द पर्सन भागवत. पर्सन भागवत को अध्ययन करोगे तो पुस्तक भागवत क्या है समझ जाओगे. और चैतन्य चरितामृत जो है वही व्यक्ति भागवत की जीवनी. ये पुस्तक भागवत जो जीता है, परम पुस्तक भागवत, अरे परम व्यक्ति भागवत कौन है? श्रीमती राधा रानी. वो महाप्रभु उनकी भावना को लेकर उनके जीवन को आप पढ़ोगे, उन्होंने भागवत को जिया. तो चैतन्य चरितामृत में और भागवत में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली. क्योंकि व्यक्ति भागवत जब पुस्तक भागवत जीता है तो उनकी जीवनी कैसी होती है वो देखना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो. भागवत इन एक्शन इस चैतन्य चरितामृत. भागवतम इन एक्शन. बुक फॉर्म इज भागवतम, एक्शन फॉर्म इज चैतन्य चरितामृत. क्योंकि त्याग भी एक वैराग्य है, त्याग भी एक ऐश्वर्य. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य. वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है. हम लोग गांधी जी से क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि पूरी पूरे भारत उनको मानती थी और वो चाहते तो प्रेसिडेंट बन सकते थे, प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, फाइनेंस मिनिस्टर कम ये मिनिस्टर, डिफेंस कोच भी बन सकते थे. कोई पूछने वाला नहीं था. बोले तुम लोग बनो, मेरे को नहीं लेना देना. बस उनको ज्यादा लोग पूछते हैं. वो भी एक ऐश्वर्य है. मतलब सब कुछ होते हुए भी उससे अलिप्त रहना. जब कोई करोड़पति आदमी है पर उसका रहन सहन बहुत सिंपल है तो हम उससे आकर्षित होते हैं. बड़ा क्या सिंपल आदमी है. एक भिखारी सिंपल है तो वो तो सिंपल रहने पड़ेगा. कौन सा बड़ी चीज है? और जबरदस्ती उसको सिंपल रहना ही पड़ता है. पर एक करोड़पति बड़ा सिंपल है तो बोलते वाह क्या सिंपल है. वो उसकी मानता है. तो भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है पर साइमल्टेनियसली इज रिनाउंस्ड. उदासीनवत आसीन है, विरक्त है. वो भी एक ऐश्वर्य है. त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, प्रभु रामचंद्र ने भी त्याग दिखाया उनको. एक्चुअली होल अयोध्या पागल थी राम के पीछे. अगर राम कहते कि नहीं मैं राजा बनने वाला हूं, हाड़ी बोल, सब लोग आ जाते थे. और राम ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है मैं जाऊंगा. और भी पागल हो गए लोग, वाह क्या इंटीग्रिटी. सो दैट इज ऑल्सो एन ऑपुलेंस. त्यक्त्वा सुदुस्थित सुरेप्सित, पूरी देवतागण भी जिस ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, पूरी पूरी देवतागण लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं. और लक्ष्मी जी कहां, सीता माता राम के पीछे गई. और जहां सीता है वहां अयोध्या है ऑलरेडी. तो रियल वैराग्य क्या है? रियल वैराग्य का मतलब एनीथिंग नॉट कनेक्टेड टू कृष्ण वी आर नॉट इंटरेस्टेड. शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीनम. एक भक्त के लिए सोना पत्थर के समान है अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगे, और पत्थर सोने के समान है अगर वो भगवान की सेवा में लगा जा सके. क्योंकि वो पत्थर जो भगवान की सेवा में लग जाता है वो चिंतामणि हो जाती है. वो चिंतामणि प्रकर सदमश एक्चुअली वैकुंठ धाम है. सो इन एंड ऑफ इटसेल्फ नथिंग इज कॉस्टली और यूजलेस. एवरीथिंग हैज इट्स ओन पोजिशन. जैसे नाखून है, नाखून जब शरीर से जुड़ा हुआ है तो उसको नेल पॉलिश लगा के कितना सुंदर सजा जाता. वही नाखून अगर उंगली से अलग कर दिया तो छूने के बाद स्नान कर दें. बाल, बाल जब सर के ऊपर है कितना खर्चा करते हैं हम लोग उसको एकदम फर्स्ट क्लास रखने के लिए. वही बाल अगर सर से अलग हो गया तो घृणात्मक लगता है. तो मायावादी लोग, ऐसे एक साधु थे, उनका एक फोटो उनके शिष्य बेचते थे. और फोटो कैसा है, पैसा है और वो ऐसा कर रहे हैं. वो फोटो एक्चुअली बेचते थे लोग, देखो हमारे महाराज जी कितने घृणात्मक रूप से पैसे को देख रहे. तो जब प्रभुपाद को उनके शिष्यों ने बताया कैसा है तो बोले एक काम करो, पैसा रखो मेरा एक फोटो लो ऐसा. युक्त वैराग्य निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते. युक्त वैराग्य का मतलब है हम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं भगवान की सेवा के लिए. और अगर सेवा में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो हमारे लिए कंकड़ के समान, पत्थर के समान. क्योंकि एक्चुअली सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ भगवान की शक्ति है. और उसकी परिपूर्णता तब है उसको जब भगवान की सेवा में लगाया जा सके, तब उसकी परिपूर्णता है. ये तो गुणात्मक है. जहां तक बुद्ध का सवाल है, ये वो थे शक्तावेश. और उनका एक उद्देश्य अलग था क्यों उन्होंने वैराग्य दिखाया. क्योंकि उससे पहले वो बहुत, एक्चुअली लंबी ये है कि किस तरह से वैदिक जो धर्म है उसमें क्या बोलते हैं, एनिमल सैक्रिफाइस, सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर निंदसी यज्ञ विधेर आहा श्रुति जातम. यज्ञ में व्यासदेव ने कहा था, व्यासदेव को नारद मुनि ने कहा था, तुम अभी ऐसे ग्रंथ रचना किए हो जिसके कारण आने वाले लोग उसका कारण लेके अपने इंद्र तृप्ति के लिए कत्तल खाना बना देंगे वो मंदिर को. यज्ञ विधि अभी वो सब छोड़ो और शुद्ध भागवतम लिखो. और ऐसा ही हुआ जिसने नारद मुनि ने कहा था, उनके दूसरे ग्रंथों को लेकर कत्तल खाना बन गया था मंदिर सब. तो निंदसी यज्ञ विधि, वो यज्ञ विधि को निंदा करने के लिए श्रुति जातम, श्रुति से उत्पन्न हुई. सदय हृदय दर्शित पशु घातम, इसीलिए बोले कि नहीं भोग करने की, पूरी दुनिया को भोग करने के लिए तो उसको त्यागो तुम. पर असली त्यागना मतलब क्या, असली त्यागना मतलब उसको भगवान की सेवा में लगाना. तीन प्रकार के लोग होते हैं, भोगी, त्यागी और भक्त। रूपा जी सुंदर उदाहरण देते हैं। आप समझ लीजिए, एक आदमी जा रहा है और उसने अपना बटुआ जो पर्स है वॉलेट वो खो दिया, पैसा गिर गया, वो चला गया। अब उसमें 5,000 रुपया है और वो रोड में पड़ा हुआ है, पर्स पड़ा हुआ है, उसमें 5,000 रुपया है। तो पहला व्यक्ति आएगा और देखेगा कोई नहीं है, मोटा बटुआ है, खोल के देखेगा 5,000। फाइंडर्स कीपर्स, लूजर्स वीपर्स, बस उठा के ले गया। दूसरा आता है, कहता है कि कोई नहीं है और पैसा पड़ा हुआ है, पर पैसा मेरा भी नहीं है। तो चुपचाप चल बनता है, वो बोलता है मेरा नहीं है तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं। तीसरा आता है, बोलता है कोई नहीं है पर पैसा पड़ा हुआ है, किसी का तो होगा ना पैसा, हो तो उसमें से एड्रेस देखता है और जाके उसको लौटाता है। बोले ये अंतर है, ये सारी चीजें जो है संसार, ये लक्ष्मी है, भगवान की शक्ति है, अंतरंग बहिरंग या अंततः उनकी शक्ति है। तो एक कर्मी, एक कर्मी क्या करता है, भगवान तो दिख नहीं रहे, कहां है भगवान, कुछ नहीं, और ये इतना पड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है, अपना झंडा गाड़ देता है, बस ये मेरा है, क्योंकि भगवान नहीं है इसीलिए मेरा है। हिरण्यकशिपु, रावण, सीता का भोग करना, राम को नहीं स्वीकार करना जीवन में, तो रावण की प्रवृत्ति भोगी। तो दूसरा है त्यागी, बोलता है भगवान तो दिख नहीं रहे, ये मेरा तो नहीं है, क्योंकि मैं पैदा होने से पहले ही था ये सब, अब मेरे जाने के बाद भी रहेगा, तो मेरे से इसे लेना देना नहीं, मैं तो हिमालय में जाके बैठूंगा, तो पहले से अच्छा है कम से कम। तीसरा कहता है कि नहीं, शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए, प्रतिबिंब है तो सही वस्तु होना चाहिए, पेड़ है तो जड़ होना ही चाहिए, जड़ के बिना पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, तो सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होनी चाहिए, और इस सृष्टि की जो भी चीज है उनकी सेवा में लगनी चाहिए, तो उसको मैं उनकी सेवा में लगाऊंगा, वो पूरा वैराग्य है, दैट इज परफेक्ट रिनंसिएशन, कंप्लीट रिनंसिएशन। अदर वन इज फल्गु वैराग्य, इनकंप्लीट रिनंसिएशन, आपने उपयोग नहीं किया अपने लिए, पर जिसके लिए रखा गया उसका भी उपयोग नहीं किया हमने, पर उसका संपूर्ण उपयोग। तो बुद्ध का अवतार था जो भोगी लोग हैं उनको त्यागी बनाने के लिए, और भगवान के जो दूसरे अवतार हुए वो दिखा धर्म संस्थापनार्थ है, वो क्या है एक्चुअली, भक्ति क्या है, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य इज रियल प्रेम, प्रेम का मतलब है शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिणम, अगर गोविंद नहीं है तो इस भौतिक संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं, और भौतिक संसार को उनकी सेवा में लगा सकता हूं तो मैं विश्व का सम्राट भी बनने के लिए तैयार हूं, नो प्रॉब्लम। दैट इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज ए ऑपुलेंस, वो भी एक ऐश्वर्य एक्चुअली, षडैश्वर्य में से वो भी एक, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य, और भक्ति से ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत, ज्ञान और वैराग्य के दो बच्चे हैं भक्ति के। एक लास्ट प्रश्न, एक्चुअली कार्तिक महीना राधा रानी से अभिन्न है, ऐसा वो महीना जो है बहुत प्रिय है, राधा रानी का महीना है वो, तो उस समय जो खास करके वृंदावन में भक्ति करते हैं, भक्ति सामर्थ्य में वर्णन है, वो भगवान को प्रिय है, जैसा जैसा भगवान राधा रानी प्रिय है वैसा राधा कुंड प्रिय है, इसलिए उनकी सेवा, मतलब उनकी सेवा, जैसे आपको प्रसन्न करना है, मुझे एक बहुत करोड़पति आदमी है उसको प्रसन्न करना है, उसको प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है और करोड़पति आदमी है, उसको मैं क्या दे सकता हूं, उसके पास सब कुछ है, पर उसके बच्चे को अगर थोड़ा एक लॉलीपॉप खिला दिया और वो जाके बोलता है ये अंकल बहुत अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति को भी बहुत प्रिय हो जाता है। इसी तरह से राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है, उनको प्रसन्न कर दें हम और वो आसानी से प्रसन्न हो जाती है, वो तो समझती है कि मैं भक्त है ही नहीं, हूं ही नहीं, ये सब भक्त है, इनको स्वीकार करो, मेरे से अच्छा भक्त है। तो थोड़ा भी भक्ति करें राधा रानी की प्रसन्नता के लिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो शॉर्टकट है, बुद्धिमान व्यक्ति शॉर्टकट लेता है, लॉन्ग कट नहीं। तो जो जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो। भक्ति का मतलब अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। एकादशी, एकादशी जो है हरिवासर, वो अनुकूल है ना, शुद्ध भगत चरण रेणु अजन अनुकूल, सब अनुकूल चीज है। वहां भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, माधव सेवा भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली। तो एकादशी जो है वो भक्ति जननी, भक्ति की मां है। तो उसका पालन करोगे जैसा मां बच्चे को पैदा करती है, ऐसा तुरंत भक्ति हमारे हृदय में पैदा हो जाएगा। माधव तिथि भक्ति जननी परम आदरे कोरे, अगर उसको आदर पूर्वक उसका हम पालन करेंगे। इसी तरह से कार्तिक महीना भी एक्चुअली चरण देखना, क्या चरण एक्चुअली, चरण देखने का मतलब देख लिया आ गया, कौन सा बड़ा काम किया। देखने का मतलब है समझना उसको और उनकी सेवा में लगना एक्चुअली, और सेवा में लगने का मतलब है एक्चुअली मतलब उनकी सेवा करना, मतलब भक्ति करना। जो भक्ति रसामृत सिंधु देख रहे हैं ना, तो भगवान की चरण कमल है, राधा रानी की चरण कमल है, वो संपूर्ण क्या बोलते हैं उनका स्वरूप है वो। तो उनकी सेवा करना, उसका अध्ययन करना और उसको पालन करना एक्चुअली राधा रानी की कृपा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, थाय गौर प्रेमानंदी।